بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى انسان جب پیدا ہوتا ہے لوح محفوظ میں اس کے لیے پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے رزق صحت عزت عمر وقار دولت شان و شوکت اور زندگی کا نصیب اور مقدر یہ ساری چیزیں اس کے لیے پہلے لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے اس نے کیا کرنا ہے حتیٰ کہ یہ شقی ہے یا بخیل ہے یا بدبخت ہے یہ کیسا ہے اس کے لیے سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے اب جب ماں کے پیٹ سے اللہ کے خزانوں میں دنیا میں آتا ہے اس کے بعد اس کی تقدیر کا وہ نوشتہ لکھا ہوا شروع ہوتا ہے اور نظام شروع ہو جاتا ہے. بوڑھے کہتے ہیں بچہ جھولے میں بتا جاتا ہے یہ کیسا ہوگا. بوڑھے کہتے تھے بچہ جھولے میں بتا جاتا ہے تو جھولے کا بچہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے, وہ اتنا بڑا ٹائر تو جھولے میں نہیں آ سکتا, چھوٹا سا ہی ہوتا ہے. جھولے میں بچا جاتا ہے بچہ, بوڑھے کہتے تھے, بڑے کہتے تھے کہ کس مزاج کا ہے کس طبیعت کا ہے. آپ نے بعض بچوں کو دیکھا ہوگا غصے کے دوران زمین میں ٹکرے مارتے ہیں, ماتھا مارتے ہیں, تو کیا وہ متکبر ہیں؟ انہیں تو تکبر کا پتہ ہی نہیں, انہیں تو غرور کا پتہ ہی نہیں, انہیں غصے کا پتہ نہیں, غضب کا پتہ نہیں, جلال کا پتہ نہیں, ضد کا پتہ ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے. وہ لاشعوری طور پہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں, لاشعوری طور پہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. بچہ جو ہے وہ پہلے دن بتا جاتا ہے. بڑے کہتے ہیں اب بچے کی پہلے دن سے زندگی کی ابتدا شروع ہوتی ہے. اس نے فقیر ہونا ہے, غریب ہونا ہے, تنگ دست ہونا ہے, ساری عمر منگتا ہونا ہے, چور بننا ہے, دھوکے باز بننا ہے, پھر ہاتھوں کو دیکھنے والے ان کے انگوٹھے, انگلیاں, لکیریں, آنکھیں, بھویں, ماتھا, ہونٹ, ناک, ناک اور ہونٹوں کے درمیان یہ وقفہ, ناک اور اوپر کے ہونٹ کے درمیان کا یہ وقفہ, انگوٹھے, انگوٹھا بڑا ہے یا پہلی انگلی چھوٹی ہے, چھوٹی انگلی بڑی ہے یا پہلی انگلی چھوٹی ہے, اس زندگی کے کئی آثار ہیں جو اس کی زندگی کے عکس کو بتاتے ہیں, جو اس کی زندگی کے عکس کو بتاتے ہیں کہ یہ زندگی یہ کیسے گزارے گا, یہ کیسے گزارے گا. جا رہے تھے تو مٹی میں پاؤں لگے ہوئے تھے, ننگے پاؤں چلنے والے کے, تو وہ کہنے لگے یہ کون بندہ ہے؟ میں پتہ نہیں حضرت. حضرت نے پوچھا ابھی کون نکل کے گیا ہے, پوچھا کون نکل کے گیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت فلاں بندہ گیا ہے ابھی جنگل میں حاجت کے لیے. فرمایا آئے تو ہمیں ملوانا. تو جب وہ واپس آیا تو اس کو دیکھا ایسے, کہاں سے آئے, کیسے آئے, ہماری خانقاہ آستانے تسبیح خانے میں کب سے آئے, کتنا عرصہ ہو گیا, کیسے آئے؟ اچھا, ان سے کہا سب سے بھائی اس کا بستر ہمارے ساتھ لگوا دو. بڑے بڑے خدام جو حضرت کے ساتھ زندگی ساری گزری, بستر ساتھ لگانے کی حسرتیں لیے, وہ حیران کہ یہ کیا کہانی ہے, یہ کیا بات ہے. جی ٹھیک ہے جی, بستر ساتھ لگوا دیا. گیارہ راتیں ساتھ رویا سویا, گیارہ راتیں ساتھ سویا, اور گیارہ راتوں کے بعد فرمانے لگے کہ جاؤ اپنے مقام پہ, और अपने मकाम पे जाके लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाओ। ये लाइट क्यों बंद है आज? अपने मकाम पे जाके लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाओ। हजरत मुझे तो अल्लाह अल्लाह सीखने आया हूं, मुझे तो इतनी आती नहीं कि मैं सिखाऊं, मैं तो सीखने आया हूं। पर मैं हमने कह दिया बस जाके सिखाओ, अब क्या करें, कैसे सिखाए? चल पड़ा, कुछ अरसा वहां रहा था तो कुछ अरसे के बाद हजरत की पांव पे नजर पड़ गई। मैं वाकया दोहरा रहा हूं। उस वाकये के बाद सिर्फ 11 रातें दुर्वेश के साथ रहा, अल्लाह वालों के साथ रहा, सिर्फ 11 रातें। और 11 रातों के बाद फरमान लगे जा अपने मकाम पे, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखा। चला गया। अब जब वहां पहुंचा हर बंदा मिलने आ रहा, सुनाया कि आप फलां अल्लाह वाले के पास होके आए हैं, कुछ उनकी खैर की बातें हमें भी सुनाएं, कुछ उनकी बरकत की बातें हमें भी सुनाएं, कुछ उन अल्लाह वाली बातें हमें भी सुनाएं। हैरान हो गए, ये तो मुझे पूछते ही नहीं थे और मुझे आज तक इन्होंने कुछ हाल अहवाल कुछ लिया ही नहीं, ये कैसे? आज तक इन्होंने मुझे पूछा ही नहीं। बताने लगे, लोग आने लगे और उनको पता चला कि फलां अल्लाह वाले के पास गए थे, वहां हजरत के पास कुछ वक्त गुजार के आए हैं, और आने लगे और आने लगे और आने लगे। आते आते लोगों की जिंदगियां बदलने लगी और लोग तासुर लेने लगे और लोग असर लेने लगे और लोग हैरत अंगेज तौर पे उनका अदब भी करते थे, एहतराम भी करते थे, दिल से मोहब्बत भी करते थे, इकराम करते थे। लेकिन उसके साथ साथ लोगों की जिंदगियों में इनकलाब आने लगा और हैरत अंगेज इनकलाब आने लगा। अब ये हैरान है, सब कुछ देख रहा है ये बंदा, ना हाफिज, ना आलिम, ना कारी, ना बुजुर्ग, ना वली, ना गौस, ना कुतुब, ना अबदाल, ना कलंदर, ना नकीब, ना नजीब, ना अबरार, ना अवताद, कुछ भी नहीं। चुप करके देख रही है कि हुआ क्या है मेरे साथ। इसे इतना पता था कि मेरे पांव पे नजर पड़ी थी, वो पांव जो मिट्टी पे लगा था, उस पांव के बाद हजरत ने मुझे अपने करीब सुलाया, करीब बिठाया और फिर मुझे अपने मकाम पे भेज दिया। अब कुछ अरसे के बाद जी में आया कि अपने हजरत की खिदमत में फिर हाजिरी दूं, तो कुछ अरसे के बाद फिर हाजिर हुआ। कोई 2 साल 2.5 साल के बाद हजरत खुश हुए, बिठाया और हजरत ने आंखों में सवाल पढ़ लिए कि इसके आंखों में यह सवाल है, यह जस्तुजू है कि मैं क्यों आया, यह सवाल है और यह जस्तुजू है। हजरत ने फरमाया तेरा पांव जो है, तेरा पांव तेरे 7वें बाप को बता गया था, फिर पूछा यह बता नक्श, नैन, आवाजें, तबीयतें, मिजाज, नस्ल दर नस्ल चलते हैं? कहा हाँ चलते हैं। बीमारियां भी तो चलती हैं नस्ल दर नस्ल, उन जी हमें खानदानी बीमारी है, खानदानी बवासीर है, खानदानी जोड़ों का दर्द है, वगैरह वगैरह चलती हैं। तेरे पांव को जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो मोती है, तेरे पांव को देख के, और वो पांव भी मिट्टी पे था और आबदार मोती है, और इसकी 7 नस्लों में एक ऐसा अल्लाह वाला था जो जिंदगी के रमजान किसी ऐसे दुर्वेश के यहां गुजारता था जहां दिन रात अमाल की मशक होती थी। ये अल्फाज पे गौर कीजिएगा, वो 7 नस्लें पहले, 13 वालिद, दादा कहूं, परदादा कहूं, वालिद कहूं, साथ वो किसी दुर्वेश के पास गुजारता था जिन दहा दिन रात आमाल की मशक होती थी। उस मशक की बरकत से, उसकी मशक की बरकत से उसका असर तेरे बाप उसके बेटे पे नहीं पड़ा, फिर उसके बेटे पे नहीं पड़ा, फिर उसके बेटे पे नहीं पड़ा, लेकिन वो बरकत आखिर असर कर जाती है, उसका असर आके तुझ पे पड़ा और तुझसे अल्लाह काम लेगा। और तेरे अंदर विलायत फूट पड़ी है। 7 रातें 11 रातें हमने तुझे अपने साथ सुलाया, और भी फकीर हमारे साथ सो रहे थे, लेकिन तूने हमारे साथ सोया। और पूछा, पता है कौन सो रहे थे? कहा मेरे बेटे मेरे साथ सोते थे, बेटों के अलावा सिर्फ तू सोता था और कोई नहीं सोता था। और मैंने 7 रातों में देखा तेरे और आसमान के दरमियान नूर का एक तांता था, नूर का एक पूरा हाला था, तेरे और आसमान के दरमियान एक नूर था जो टूट नहीं रहा था। तो मैंने समझा कि मेरे पांव, मैं यही देखने के लिए मैंने तुझे सुलाया था, तू गहरी नींद जवानी की सो रहा था। मैं रात की तन्हाइयों में कभी उठता था कभी सोता था, और मैं तुझे देखता था, और नूर का एक तांती था, नूर की एक लड़ी थी, नूर का एक हाला था जो अर्श से फर्श तक तेरे ऊपर था और आसमान तक था। ये वो विलायत थी जो तेरे मुकद्दर में आई थी, तेरे सातवें बाप दादा की उस मेहनत पे, उस मुशक्कत पे जो वो रमजान किसी अल्लाह वाले के हाथ गुजारते थे और आमाल की मश करते थे। किसी मश करते थे, रोजाना मसनून दुआएं पढ़ी जा रही, खाने से पहले, खाने के बाद, खाने के दरमियान, नमाज से पहले, नमाज के दरमियान, फजर से पहले, फजर के बाद, मुजरमाना हाजरी, कभी क्या जिक्र, कभी क्या तस्बीह, कभी जुमे के बाद के अमाल, कभी जुमे से पहले, ये अमाल की मश्क हो रही है, मश्क हो रही है। 11 रातें मैंने तुझे देखा कि तेरे ऊपर नूर का हाला है, नूर है जो अर्श फर्श तक तेरे ऊपर और तेरे दरमियान है। मैं समझ गया कि यह बंदा जो है, यह बंदा इस काबिल है कि इसको भेजा जाए। फिर उसे एक वाक्य सुनाया। एक साहब थे, उनका नाम हसन था, हसन था, अल्लाह की मोहब्बत और जस्तुजू की तलब में थे। एक दरवेश की खिदमत में हाजिरी हुई, आपने कुछ अरसा रखा और फरमाया अब जाओ, तेरा बाकी हिस्सा मदीना में पड़ा है, चले जाओ मदीना मुनव्वरा चले जाओ। वो मदीना मुनव्वरा चले गए, वहां बहुत अरसा रहे। एक दफा हुजूर आका की जियारत हुई और आपने फरमाया जाओ अपने मकाम पे, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाओ, अल्लाह तुझसे बहुत बड़ा काम लेगा, और एक लकब भी दिया मेरे हुजूर ने, मफहूम है। अब ये परेशान, हुक्म मिला चले जाओ, मदीना छोड़ने को दिल नहीं करता। और वो मदीना, मदीना वो था जिसमें फक्र की इंतहा थी, वो दौर था मदीना का, फाकों की इंतहा थी, गुर्बत की इंतहा थी। अब दिल नहीं कर रहा, मुर्शिद ने फरमाया मदीना चले जाओ, और मदीने वाले ने फरमाया अपने मकाम पे जाओ, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाओ, अल्लाह तुझसे काम लेगा। अब परेशान, परेशान वहां से आए, सफर करते करते जब अपने मकाम पे पहुंचे, मकाम पे आए तो एक मजजूब आया, और मजजूब ने आके कहा, जब मदीने वाले ने कहा कि हम तुमसे काम लेंगे, फिर वो जाने उनका काम जाने, तुम्हारा क्या ताल्लुक है फिक्रमंद होने का, बस वो खुद काम लेंगे, खुद राहें बनाएंगे, तुम्हें क्या जरूरत है परेशान होने की। बस फरमाया ये मजजूब का कहना था, मेरा दिल ठंडा हो गया। और फिर मजजूब ने पूछा, उन्होंने जो तुम्हें लफ्ज कहा था वो कब क्या कहा था? उन्हें जो उन्होंने फरमाया था, तू मोइनुद्दीन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, तू मोइनुद्दीन है, तेरे जरिए दीन की मोइन मदद, इआनत मदद, हेल्प, तू मोइनुद्दीन है, तो बस ठीक है, उन्होंने फरमा दिया, तेरा क्या ताल्लुक है। बस कहा एक काम करना, जिस शेख की बरकत से यह मिला है पहले वहां हाजिरी देना, और वहां हाजिरी दे के इजाजत लेके ना बैठ जाना कहीं वीराने में, कहीं कमरे कोठे में, लोग वहीं आएंगे अल्लाह अल्लाह सीखने। जब उन्होंने खुद कह दी काम लेंगे, जब फरमाया हमने कुरान भेजा है और हम खुद इसकी हिफाजत करेंगे, नहनु लहू हाफिजून, हम खुद हिफाजत करेंगे, बस वो जाने उसका काम जाने, कहा कहा अब्दुल मुत्तलिब ने, उन्हें कहा एक यमन का आया बंदा काबे को गिराने के लिए और कहते हैं कि लोग यहां क्यों आते हैं, मैं काबा वहां यमन में बनाऊंगा गिराने के लिए। हां क्यों, की फौज लेके आया है। और कहा और क्या किया, कहा आपके ऊंट चल रहे थे वो भी उसने पकड़ लिए। उसने कहा उसको कहो मेरे ऊंट वापस कर दे, बाकी काबा जाने काबे वाला जा, मेरे ऊंट वापस कर दो। और काबे की हिफाजत काबे वाले ने फिर कैसे करके दिखाई, अलम तर कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। हां आप क्या समझते हैं कि यहां जो अमाल की मशक हो रही है दिन रात, इसका आपकी नस्लों पे कोई असर नहीं पड़ रहा, आपकी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, यह एक फजूल लिखा जा रहा है। याद रखिएगा आपके नीचे बटर पेपर पड़ा है, आपका लिखा हुआ कई सफों पे लिखा जा रहा है। वो होता है ना बटर पेपर, होता है क्या वाला, होता कार्बन पेपर, भूल गया कार्बन पेपर है। कार्बन पेपर बाज ऐसे होते हैं एक पे लिखो एक पे लिखा जाता है, बार ऐसे हो तो एक पे लिखो कई सफों पे लिखा जाता है। आप तो कार्बन पेपर के ऊपर लिख रहे हैं। आप जो मशक कर रहे हैं जिंदगी में इबादत और खिदमत की, तस्बीखाने में इबादत और खिदमत की, इबादत और खिदमत की, ये जो मशक कर रहे हैं ये आपकी नस्लों को में मोइनुद्दीन लाएंगे। क्यों, मोइनुद्दीन अब भी आ सकते हैं, नबुवत का दरवाजा बंद हुआ है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ। नबुवत का दरवाजा बंद हुआ है ना, विलायत का दरवाजा तो बंद नहीं हुआ। अब भी मोइनुद्दीन आए हैं, हैं दुनिया में, आप आएंगे लेकिन बुनियादें यही होंगी कि जो दिन रात अमाल की मश कर रहे हैं, मश कर रहे हैं, मश कर रहे हैं। इस मश के बाद अल्लाह जल्ला शानहु मोती चुनते हैं। इस मश के बाद एक निजाम आलम में एक फैसले होते हैं। इस मश के बाद एक कुदरत का निजाम चलता है और अल्लाह पाक बंदों को चुनता है। और अल्लाह पाक कुरान में एक लफ्ज कहता है अल्लाह यश्तबी इलही मैं यशा, हम चुन लेते हैं बाद बंदों को, इंतखाब करते हैं। एक है सिलेक्शन, एक है इलेक्शन। हैं इलेक्शन होगा तो मुल्क का बादशाह बनेगा, होने का नहीं, इस बादशाह को पकड़ के यूं कर दो किसी और बादशाह को ले आओ जो आपके मुल्क में हुआ है, इस बादशाह को एक तरफ कर दो, उस बादशाह को ले आओ। अल्लाह यश्तबी इलैही मन यशा, अल्लाह चाहे पल में बंदों को चुन लेता है, इंतखाब करता है। और यहां की बादशाहत को जवाल है और अल्लाह पाक ने जिसको बादशाहत दी है उसको जवाल नहीं। क्यों, अल्लाह को जवाल नहीं, अल्लाह जिसको बादशाह बनाएगा उसको जवाल नहीं। ये जो दिन रात अमाल की मश कर रहे हैं और खिदमत की मश कर रहे हैं, थक रहे हैं, अपने आप को थका रहे हैं, थक रहे हैं और अपने आप को थका रहे हैं। हमारे यहां एक नंबर हाल में कुछ लकड़ी की चीजें बननी थी, दो चार डेस्क, दो चार कुछ रूहानी तौर पे हम रूहानी पैकेज शुरू कर रहे हैं। मैंने लकड़ी के मिस्त्री तीन चार भेजे। मुझे पता चला कि दो हजरात को कहने लगे जी हम नहीं कुछ करते, ठीक, वो वापस आ गए, उन्हें कहे जी हम नहीं करते। एक उन्हें कहे एक जम गया, आया मैं क्या निकल गया आ गया। उन दो को मैंने बुलाया, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे जी वो लकड़ी उठा के यूं रखनी होती थी तो फिर रोजे के साथ तो नहीं हो सकता, लकड़ी थी या पत्थर थे, और लकड़ी कोई ऐसी तो नहीं थी कि जो 20-20 मन की लकड़ी थी, मोटे मोटे बड़े कोई 12-22 मीटर टायर थे छोटे, मैंने उठा उठा के रखवाने थे ऐसे तो थे नहीं। मैंने कहा हाय हाय, किस्मत और मुकद्दर का सितारा चमका था और यही मौका था जब थक जाते और टूट जाते, बस वो एक फैसले का वक्त होता। खिदमत करते करते थक जाते और टूट जाते, वही फैसले का वक्त होता है, वही लम्हा होता है पाने का, वही लम्हा होता है झोलियां भरने का, वही लम्हा होता है मुकद्दर संवारने का, वही लम्हा होता है कायनात के खजानों में, अल्लाह के अर्श से مالدار، ایماندار اور حیرت انگیز طور پہ شاندار ہونے کا وہی لمحہ ہوتا ہے جب ٹوٹ جاتا ہے، جب تھک جاتا ہے، جب اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، جب اپنی ہستی کو مٹاتا ہے پھر دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ جو آپ دن رات مشق کر رہے ہیں اس کا اثر آپ کی ذات پہ نہیں ہے، یہ ایک نیچے آپ کے کیا پیپر ہے، کاربن پیپر، میں بھول گیا تھا، میں منہ سے پھر بٹر پیپر نکل رہا تھا، کاربن پیپر نیچے ہے اور پھر کاربن پیپر نیچے لکھتا چلا جا رہا ہے، نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل لکھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ لکھ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ بس رب کے علاوہ کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور رب کیوں نہیں مٹائے گا؟ رب اس لیے نہیں مٹائے گا، رب اپنے فیصلوں کا سچا اور اپنے وعدوں کا سچا ہے، اور رب اپنے فیصلے اور وعدے پورے کر کے دکھائے گا، پورے کر کے دکھائے گا، پورے کر کے دکھائے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب مجھے انہوں نے واقعہ سنایا، کہنے لگے ایک جگہ میں گیا ان کے گھر کے اندر، ان کے گھر کے اندر سوری میں نے پریشانی، مشکلات، مسائل، الجھنیں، لڑائیاں، خاندانی ٹکراؤ دیکھے، ٹکراؤ دیکھے۔ کہنے لگے میں نے ایک کونے میں دیکھا کچھ نیک جنات ہیں، تخت پوش بچھا ہوا ہے، ایک جن ہے تسبیح کر رہا ہے، ایک وظیفہ کر رہا، ایک اللہ اللہ کر رہا، ایک درویش ہے۔ تو کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہے، آپ کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہے؟ کہا ہم نے تو انہیں بڑا روکا، ہم نے تو انہیں بڑا روکا، اور ایک بندے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ایک بندے کی طرف اشارہ کر کے کہا، کہا کہ یہ بندہ دن رات لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کی مشق کرتا رہا، اور اب بوڑھا ہو گیا کہ فلم انڈسٹری میں اس کی کرتا رہا، اور رزق وہی نسلوں کو کھلاتا اور پلاتا رہا، ہم نے تو بہت کوشش کی کہ یہ ایسا نہ کریں، ہم ان کا ساتھ دیں، پر یہ ہماری بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو کہنے لگا میں نے ان کی منت کی، ان سے درخواست کی، آپ شفقت فرمائیں، آپ مہربانی فرمائیں، آپ ان کا ساتھ دیں۔ کہا کہ میں واپس آیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور انہوں نے ساتھ دینا شروع کر دیا، اور کہا کہ مستقل ہم آپ سے بھی ملیں گے، آپ کی محفلوں میں بھی آئیں گے، اور آپ کا ساتھ بھی دیں گے، آپ کا ہر عمل آپ کی نسلوں پہ عمل کر رہا، منتقل ہو رہا، کاغذ ایک نہیں لکھا جا رہا، نیچے کئی کاغذ لکھے جا رہے ہیں۔ معین الدین کیسے بنتے ہیں؟ ان کا بھی انتخاب ہوتا ہے، ان کا بھی انتخاب ہوتا ہے، پاؤں کو دیکھ کے ایک پل میں انتخاب ہو جاتا ہے، یہ پاؤں کس کا ہے، ایک پل میں انتخاب ہوتا ہے۔ کہنے لگا ہم ہاتھ دیکھ کے نا، میں قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میں جھنگ میں ڈی سی تھا، میں ہاتھ ملاتا تھا، بندہ ہاتھ ملاتے ہی لکھواتا تھا، اس کو ایک لاٹ لکھ، اس کو دو لاٹیں لکھ، اس کو تین لاٹ، ایک لاٹ ہوتی ہے آدھے مربع کی، 12.5 ایکڑ کی، کیوں جی آدھے مربع کی، ایک لاٹ 12.5 ایکڑ کی، اس کو ایک لاٹ لکھ، 2 لاٹ۔ کہنے لگا ہاتھ ملاتے ہی جس کا ہاتھ نرم دیکھتا تھا اس کو ایک لاٹ دیتا تھا، جس کا ہاتھ جتنا مشقت والا سخت ہوتا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، ہاتھ ملاتے ہوئے یہ لاٹیں بڑھ رہی ہیں اور کم ہو رہی ہیں، لوگوں کو کیا پتا، ہاتھ کی مشقت سے تو مالیں مال اور زمینیں بڑھ رہی ہیں، اور دل اور قلب کی مشقت جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس میں مال اور زمینیں اور رزق اور وسعت نہیں بڑھتی، ہاتھ کی مشقت۔ ایسے ہاتھ ملاتا تھا اور کہتا تھا اس کو اتنا رقبہ دے دو، آدھا مربع دے دو، ایک مربع دے دو، دو مربع دے دو، ہاتھ ملاتے ہی۔ جب یہ لوگ اللہ کے لیے اپنے آپ کو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قبول کرواتے ہیں، قبول کرواتے ہیں، دن رات کی مشق، دن رات کی مشق قبول کرواتے ہیں، سر جھکا کے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور خدمت کر کے صلہ اللہ سے لیتے ہیں، اور خدمت کرتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، کہا کرتے رہیں، ڈرتے رہیں، مانتے رہیں، مانگتے رہیں، مانتے رہیں، مانگتے رہیں، जब करते हैं फिर कुदरत फैसले करती है, फिर ऐसे लोगों में से चुनाव होता है, ऐसे लोगों में से चुनाव होता है। मेरी तरफ देखते रहे, जाग रहे हैं, ऐसे लोगों में से क्या होता है? चुनाव होता है, और उनकी नस्लों में से चुनाव होता है, और बाजों का उसी नस्ल में, बाजों का दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं नस्ल में से चुनाव होता है। आए, मैं उस दिन बैठा था अपने मुखलिस मियां साहब के पास, मैंने कहा मियां साहब शोरेश ने लिखा है जितने, ये बड़ी अजीब बात लिखी है, कह लेगा ये जितने जो कहते हैं ना ये कंजर हैं, ये मिरासी हैं, ये जद्दी पुश्ती हैं, तवायफे हैं, कोई नहीं है, इनके खानदान के पीछे ये पेशा नहीं था, कोई दूसरी नस्ल से, कोई तीसरी नस्ल से, कोई चौथी नस्ल से इस पेशे में आया, और फिर अगले नस्लों ने समझा कि हमारा पेशा यही है। कोई खानदानी तरकान नहीं होता, लोहार नहीं होता, मोची नहीं होता, कसाई नहीं होता, कोई खानदानी झाड़ू देने वाला नहीं होता। एक दफा झाड़ू देने वाले बैठे थे, मैं उनसे पूछा, एक से पूछा, मैं कहा तेरी कौम क्या है? कह रहा है जोया। एक से पूछा, मैंने कहा तेरी कौम? कहा शेख। एक से पूछा, मैं कहा तेरी कौम क्या है? करे खोसा। एक ऐसे पूछता गया, कोई जिंदगी में पेशा ऐसा नहीं है कि जिसे हम कमी कहें और हम उसे मुसल्ली कहें। क्यों? ये बातिल का निजाम है, मुसल्ले पे बैठने वाले को मुसल्ली कहा, दीन वालों को दीनदार कहा, ये निजाम है। याद रखिएगा, आपकी ये जो दिन रात की मशक्कत है, दिन रात की मेहनत है और दिन रात की कोशिश है, ये आपकी नस्लों के फैसले करवा रहे हैं कि आइंदा नस्लें कहां जाएंगी और आइंदा नस्लों के लिए कहां आपकी हिफाजत होगी, और हिफाजत भी उस वक्त होगी जब तू कब्रों में होगा और बेबस होगा। हम तेरी नजरों की, तेरी नस्लों की तीन चीजों की हिफाजत करके दिखाएंगे। ये मेरे तीन लफ्ज याद रखिएगा, तीन चीजों की हिफाजत करके दिखाएंगे। किस पे? जो रमजान में आमाल की मश्क करता है और खिदमत की मेहनत करता है। अच्छा, लोग रमजान को समझते हैं कि रमजान आराम के दिन है, हालांकि रमजान तो काम के दिन है। चलो मैं तारीख से बयान कर देता हूं, रमजान से डेढ़ महीना पहले मेहनत शुरू हुई और भागदौड़ शुरू हुई, मुशक्कत और कुर्बानियां शुरू हुई, और फकर और गुर्बत पेट पे पत्थर, हत्ता के 17 रमजान को गजवाए बदर हो गया। तो उनको तो कहना चाहिए था रमजान आराम का वक्त है, रोजे रखो, किसी गार में, किसी झोंपड़ी में मशकीजा साथ रखो, रोटी साथ रखो ना। अगर रमजान आराम का वक्त होता और काम का वक्त ना होता, बाद लोग समझते हैं शायद रमजान आराम है, काम नहीं है, खिदमत नहीं है, तो ये सारा गजवाए बदर तो हुआ ही रमजान में, 17 रमजान में है, और इससे पहले सिर्फ ये सब गजवाए बदर, उससे पहले एक मेहनत है, एक पूरा निजाम है। फिर ये नहीं है कि गजवाए बदर के बाद वो सुकून से बैठ गए, गजवाए बदर के बाद उन्होंने बदर के निजाम को, जख्मियों को और निजाम को संभालते संभालते फिर 15 शवाल तक चले गए, शाबान तक चले गए, शवाल तक चले गए। अब बोले हमारा एक जेन बना हुआ है कि शायद रमजान में काम नहीं है, रमजान में काम नहीं है। मुझे दुबई के एक साहब ने बताया, मुसलमान लेबर को नहीं लिया जाता, हिंदू लेबर को लिया जाता है। मुसलमान नमाज के नाम पे छुट्टी करता है, जुम्मे के नाम पे छुट्टी करता है, ईद के नाम पे छुट्टी करता है, मुहर्रम के नाम पे छुट्टी करता है, रबीउल अव्वल के नाम पे छुट्टी करता है, मुहर्रम पर करे छुट्टियां करता है। इस्लाम ने इबादत दी है, लेकिन जुम्मे के दिन भी इस्लाम ने कहा है फंतशरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जुम्मा पढ़ने के बाद निकलो, अल्लाह का फजल तलाश करो, रोजी रोटी करो, मेहनत करो। कुछ लोग बैठे थे मस्जिद नबी में, उमर ने पूछा कौन? कहा नानो मुतवक्किलीन। उमर ने पकड़ा दुर्रा मारा, कहा निकलो मुतवक्किलीन, जाओ मेहनत करो। अल्लाह कहते हैं मेहनत करो, तुम मस्जिद में बैठे हो कि या अल्लाह ये पत्थर बट्टा पड़ा हुआ है, इसको सोना बना दे। इस्लाम के निजाम में मेहनत भी है, मुशक्कत भी है, रहबानियत नहीं है। हम समझते हैं कि शायद रमजान जो है वो इस वक्त है कि रमजान में, हमारे एक दोस्त हैं रमजान में गेट से बाहर ताला लगा देते हैं, गेट से बाहर, ताकि बंदा समझे घर में कोई नहीं है, और फिर उठते हैं सोते हैं असर तक, असर के बाद फिर असर से बाद से लेकर मगरिब तक मगरिब के खाने की तैयारी करते हैं, मगरिब के खाने से बाद इशा तक खाते रहते हैं, फिर रात तक खाते रहते हैं, फिर खाते खाते सहरी हो जाती है, फिर सोते हैं। वो कहते हैं भाईजान बस रमजान अल्लाह के लिए रखा हुआ है। मैं कह रहा हूं कौन सा अल्लाह के लिए रखा हुआ है, तूने सोने के लिए है या अल्लाह के लिए है? हां तू रोज एक कुरान का खत्म करता अल्लाह के लिए, 200-500 रकात नमाज नफिल पढ़ता अल्लाह के लिए है। आपकी दिन रात की मशक जो कर रहे हैं, ये आपकी नस्लों के रिस्क, वुस्सत, इज्जत, बरकत और रूहानियत और नस्लों की आबादी और नस्लों की मंसूबा बंदी के लिए हैरत अंगेज निजाम चल रहा है और खामोश निजाम चल रहा है जो आपको खुद पता ही नहीं है। मेरा विजदान कहता है, मेरा एक विजदान है, गलत भी हो सकता है, मेरा एक विजदान है, मैं अपने विजदान को इस बात को दावा नहीं करूंगा, अगर कोई बंदा रमजान और रोजे के लिए फिक्रमंद है और उसकी तवज्जो कर रहा है और गरीबों का भी ख्याल कर रहा है, जकात पूरी अदा कर रहा है, फितराने का फिक्र कर रहा है कि मैं फितराना ऐसा दूं जो मालदारों वाला हो, और रोजे और इबादात का फिक्र कर रहा, या कोई रमजान गुजारने आया है, मालूम होता है कि इसके पसे पर्दा कोई था अल्लाह वाला, इसके दादे में परदादे में बड़ों में कोई था जिसकी बरकत से इसके कदम यहां उठ रहे हैं। हां जिसके बरकत से इसके कदम यहां उठ रहे हैं। मुझे उस दिन एक साहब कहने लगे, मैंने कहा आपने दाढ़ी रख ली है? एक दुनियादार के किसी ओहदे से थे। कहने लगे नहीं मैं रमजान में शेव नहीं करता। मैं चुप कर गया। मैंने कहा आपके बड़ों में खानदान में कोई बुजुर्ग पीर फकीर कोई मुल्ला मौलवी कोई दरवेश? कहने लगे सारे थे। मैं कह शाबाश है, वो जितना बन जा रमजान में वो रग आके फड़कती है, वो रग फड़कती है। एक बंदा आया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा मैं इस शक्ल का, मेरी बीवी इस शक्ल की, बच्चा इस शक्ल का पैदा हुआ है। उसके जहन में था कि यह बच्चा मशकूक है। अच्छा हजूर ने फरमाया ये बता तेरा ऊंट कैसा, ऊंटनी कैसी, कोई बच्चा और शक्ल का होता है? क्या? हाँ होता है। फरमाया बाजों का नस्लों के पीछे रग होती है, वो आके असर करती है। मैंने हदीस का मफहूम अर्ज किया है, कोई रग होती है पीछे। ये दिन रात की मशक्कतें, ये दिन रात की इबादतें। दो रास्ते हैं रमजान गुजारने के, दिन में 4 दफा सोना और घड़ी देखना और इफ्तार का इंतजार करना, एक रास्ता यह है। एक रास्ता यह है रमजान गुजारने का कि अपने को इबादत और खिदमत की मुशक्कत में तोड़ के रख दो पूरे रमजान में, दो मुशक्कतों में, इबादत और हाँ। मुझे अफसोस होता है बाजों का रमजान में किसी शोबे में लगाया जाता है कि बर्तन धो लें, चटाई उठा लें, बंदे बिखर के इधर उधर चले जाते हैं, इंतहाई अफसोस होता है। और मैं उन चेहरों को, बल्कि इधर एक बंदा बैठा था, मैंने उठाया उसको, मैं कहा तू वो नहीं है जो मेरे साथ तूने हवेली में रमजान गुजारा था 2020 वाला, हवेली में गुजारा था मैंने 2020 वाला, और वहां इबादत और खिदमत और मुशक्कत थी, खिदमत नहीं थी मुशक्कत थी, खिदमत यहां खिदमत है, हवेली में मुशक्कत है, खिदमत यहां है, हवेली में खिदमत नहीं है, वहां मुशक्कत है, तो वो नहीं था? कह रहे हाँ। मैंने कहा महरूम रह गया, आज तो जो मैं 14-15 रोजे में देख रहा हूं तो अक्सर सोता रहता है, महरूम रह गया। तुझे तो बख्त उसी रमजान में लगा था। और वो खुद कहता है वो जो मुशक्कत और मेहनत और इबादत वाला रमजान हवेली वाला था, जिसमें आप भी साथ थे, हम भी साथ थे, और हमने खिदमत भी की थी, इबादत भी की थी, मुझे तब मेरा बख्त, मेरे कर्जे, मेरी बीमारियां, मेरी तकलीफें, मेरी मुश्किलात, मसाइल कटे ही वहीं से थे। ऐ जालिम, इतना थोड़ा सा लेके तंगी है दामा, थोड़ा सा लेके कहते मैं मालदार हो गया हूं। बाज चेहरे शनासा हैं, मैं देखता हूं इस मजमे के अंदर वो बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं, जबकि वही चेहरे हैं जिन्होंने इबादत और खिदमत रमजान में की थी اور ان کو رب نے وقت لگایا تھا, اور وہ پھر رمضان میں آئے. جب یہاں آئے تو یہاں آ کے سو کے دن میں چار دفعہ, رات کو سونا ایک, فجر کے بعد سونا دو, ظہر کے بعد سونا تین, عصر کے بعد کمر سیدھی کرنا چار, چار دفعہ سو کے رمضان گزارا. ایک یہ رمضان ہے, ایک وہ ہے جس رمضان میں عبادت اور خدمت ہے. کیا میرے رب کے ہاں پیمانے ایک ہیں دینے کے؟ کیا اللہ کے ہاں ایک نظام ہے جو کچھ نہیں کر رہا وہ بھی اس کو بھی اللہ بھر کے دیکھا, اور جو کر رہا ہے اس کو بھی بھر کے دیکھا؟ ہرگز نہیں. رب کے ہاں انصاف ہے, رب کے ہاں پیمانے ہیں, رب کے ہاں ناپنے کے برتن ہیں. یہ پاؤ والا ہے, یہ ڈیڑھ پاؤ والا ہے, یہ آدھا کلو والا ہے, یہ ایک سیر والا ہے. سب کو ایک سیر نہیں ملتا. ہمارے ذہن میں اصل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے شاید رمضان سونا اور آرام کرنے کا نام ہے. نہیں, نبوی رمضان اٹھاؤ, صحابہ آل بیت کا رمضان اٹھاؤ. اس رمضان میں کیا کا ہوا, انہوں نے کیا خدمتیں, کیا محنتیں, کیا عبادتیں, کیا مشقتیں کی, اور جہاں نہ پانی ملتا تھا نہ روٹی ملتی تھی, فقر ہی فقر, غربت ہی غربت. اور فرمایا یوں دھوپ ہوتی تھی ہم ہاتھوں سے سایہ کرتے تھے یا اونٹ کے بیٹھنے کے سائے میں بیٹھتے تھے, اور دھوپ وہ ہوتی تھی جو جلا کے رکھ دیتی تھی. اللہ والو اپنی نسلوں کے لیے یہ دن رات جو مشق کر رہے ہیں, اپنے لیے رزق اور وسعت اور برکت اور دولت اور عزت کے دروازے کھلوا رہے. اور میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں, صفائی ہے, ستھرائی ہے, کوئی چیز اٹھا کے رکھنا ہے, چھپتے پھر رہے ہوتے ہیں, اور میں ان کی مقدر اور قسمت پہ حسرت کرتا ہوں. ہائے ہائے, ان کی مقدر اور قسمت پہ حسرت کرتا ہوں. یہ چھپ رہا ہے, چھپ نہیں رہا, اپنے مقدر اور نصیب کو دبا رہا ہے, اپنے چمکتے ہوئے ستارے کو ماند کر رہا ہے, اور ملنا تھا جھولی بھر کے یہ مٹھی بھر کے لے رہا ہے یا چٹکی بھر کے لے رہا ہے. چٹکی چٹکی چونڈی, ایک دو انگلیوں والی چٹکی ہوتی ہے, ایک تین انگلیوں والی چٹکی ہوتی ہے, دو انگلیوں میں تھوڑا اور تین انگلیوں میں زیادہ, اور ایک مٹھی ہوتی ہے اور ایک جھولی ہوتی ہے. تو بولو, چٹکی چونڈی مٹھی یا جھولی؟ جھولی تو سارے چاہتے ہیں, پر جھولی جب بھرنے کا وقت آتا ہے اس وقت کہتے ہیں رمضان تو آرام کا وقت ہے. تمہیں کس نے کہا رمضان آرام کا وقت ہے؟ رمضان تو کام کا وقت ہے. ایک اللہ والے کی میں عجیب بات سنی, کہا میری آج تک سمجھ نہیں آئی کہ دینی مدارس میں رمضان میں چھٹیاں کیوں ہوتی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی, اور میں بول نہیں سکتا. کیوں؟ سارا پچھلا نظام نبوت, ولایت, اللہ کے ولی, آج تک نظام نہیں تھا. وہ سارے کے سارے رمضان میں جی بھر کے کام کرتے تھے, چھٹیاں تھی ہی نہیں, چھٹیوں کے ایام کوئی اور ہونے تھے. اپنی زندگی کے سفر میں یاد رکھیے گا, عبادت اور خدمت زندگی کا سفر ہے اگر نسلوں کے لیے کچھ کرنا کرانا چاہتے ہیں. ورنہ دن میں چار دفعہ تین دفعہ آرام کر کے, اور ابھی بھی کوئی لوگ سو رہے ہیں, آرام کے بعد ابھی بھی سو رہے ہیں, فجر کو بھی سو رہے ہیں. چپ کر کے دیکھ رہا ہوں, حیران ہوں ان لوگوں پہ جو سو رہے ہیں, ابھی بھی سو رہے ہیں, حیران ہوں. پر یاد رکھیے گا, سونے والے کی مثال ایسے ہے کسی فقیر کی کہ بارش سخت ہو رہی ہے اور برتن اوندھا ہے, اور سیدھے برتن میں بارش پڑے گی, الٹے برتن میں کبھی بارش نہیں پڑے گی. بارش نور کی, سکینہ کی, رحمت کی, رزق کی, دولت کی, وسعت کی, عطا کی, شفقت کی, جود کی, سخاوت کی, کرم کی, فضل کی, صحت کی, تندرستی کی, بخت کی, نصیب کی. یہ بارش ہوتی ہے اس لمحے میں. اس بارش میں برتن سیدھا ہونا چاہیے یا الٹا ہونا چاہیے؟ خود ہی بتا دو. برتن الٹا رکھا, سارا دن نہ خدمت کی نہ عبادت کی, اور کہتا ہے کہ میں جب گھر لوٹوں تو جھولیاں بھر کے جاؤں, برتن پورا لے کے جاؤں, میری سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب خود اپنے آپ کو دیکھ لیں, میری سمجھ میں نہیں آتی. یہ میں بیدار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ آخری عشرے کے قریب ہیں, اور آخری عشرے میں سارے کی ساری مزدوریاں ملنے کا وقت ہے. میں اس لیے بیدار کر رہا ہوں, آخری عشرے کے قریب پہنچ چکے ہیں, اور آخری عشرے میں اپنی مشقت محنت بڑھانی ہے. اور اگر یہی دن میں چار دفعہ سونا اور چھپ چھپ جانا اور چھوٹی سی خدمت کہے, اچھا وہ ہو رہی ہے, یہاں کوئی خدمت ایسی تو ہے نہیں کہ گڑھے کھودنے ہیں اور कुएं खुदवाने हैं, जानबूझ के छोटी छोटी खिदमत दी जाती है, अगर नहीं करेंगे तो इनकी इबादतों पे मोहरे नहीं लगेंगे। करेंगे तो पा जाएंगे, करेंगे तो झोलियां भर जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो मिन्नत करता रहूंगा, मैं दरखास्त करता रहूंगा, मेरे जी में है, मेरे जी में है। यहां आए हैं तो चुटकी लेके ना जाएं, मुट्ठी भर के ना जाएं, झोलियां भर के जाएं। वो तो बच बच के जो चलेगा, जो बच बच के चलेगा, उसकी मिसाल तो वही आमले की है, वो सुनी हुई है आपने। आमले वाली मिसाल किसने नहीं सुनी? जो नहीं सुनी बिल्कुल वही हाथ खड़ा करें। आमले वाली मिसाल, एक जो है ना, एक ओ भाईजान सब, जब बंदों ने हाथ नीचे कर दिया फिर आप खड़े हो गए, हाथ नीचे कर दिया, हमारे कैमरे वाला बाद में खड़ा हुआ, शायद वो पांचवी नींद सो रहा था। ओ आमला गिरा हुआ था तो बागबान गया, माली गया आमला उठाने के लिए। आमले ने कहा डोंट टच मी, मुझे हाथ न लगा, मैं दीवार है खस्तगी हूं, मैं गिर पड़ूंगा तुझे आसरा समझ के। तो उसने कहा तेरा मुरब्बा बनाऊंगा, तेरे अंदर मिठास आएगा, सोने चांदी के वर्क लगेंगे, बादशाह के दिल की धड़कन खफकाने कल्ब होगा, हार्ट पल्पिटेशन, फिर सोने की तश्ती पे बादशाह के दस्तरखान पे सजाया जाएगा। इतना बड़ा जो बताया ना, कहने लगा वाह कमाल है, लेकिन वो जो तू तस्बीह खाने में ले जाके कहता है कि ये चटाई उठा ले, ये तार बिछा ले, ये क्या होगा? उन्होंने कहा बस सिर्फ इतना होगा, कुछ ज्यादा नहीं होगा, तेरे एक एक तन बदन में सुइयां मारूंगा, सुइयां मार 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 के ना, फिर कहा कि गर्म पानी में उबालूंगा, तेरे अंदर के खटास को निकालूंगा। कहा फिर? कहा गरम गरम शीरा होगा, तुझे उसमें डालूंगा, तेरे अंदर मिठास चला जाएगा। कहने लगे ओहो मेरे बदन को इतना तकलीफ देगा, मैं तो पैड़ा वैसे दुखा ना गम्मा दी मारी, मैं तो वैसे दुखों गमों का मारा तस्बीह खाने आया, मजीद सुइयां मारते हो जालमो, वैसे ही तस्बीह खाने में गम्मा दे दुखा ना कुट्या मारिया। उन्हें कहना इसके बगैर नहीं होगा, उन्हें कहना ना ना मैं नहीं करता, चलो भाई ठीक है तेरी मर्जी। वो आमला पड़ा रहा, अगले दरख्त के नीचे आमले गिरे हुए थे, पके हुए बेहतरीन आमले, उनको उठाना चाहता तो उसने कहा ये क्या है? उसने सारी कहानी उसे वही सुना दी, ऐसे तुझे छीदूंगा, ऐसे उबालूंगा, तेरे अंदर के खटास को निकालूंगा, निकाल के तेरे अंदर मिठास भरूंगा, सोने और चांदी के वर्क लगेंगे और तू बड़े बड़े दस्तरखानों पे सजाया जाएगा। उन्हें कहा अगर इतना बड़ा मकाम है तो फिर कोई बात नहीं, इतना बड़ा मकाम है तो कोई हर्ज नहीं, फिर आज चलो ठीक है। अब इस आमले को उठाया, इस आमले को उठाया, उठा के ना वही कुछ किया जो करना था आमले के साथ, और बादशाह के दस्तरखान की जीनत बन गया और उसकी कीमत लग गई। और जो वो आमला था वो पड़े 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 खुश्क हो गया, काला हो गया। उसको उठाया, इकट्ठा किया, बोरियां भरी, पंसारी को दे आया, हर्बल स्टोर वाले को, पंसारी को। पंसारी के पास एक बंदा आया, उसने उसको लिया और दवाएं मिलाई, कूटा और कब्ज को शाह दवाई बना दी। काम आया पर कब्ज को शाह दवाई बनी, वो काम आया पर सोने के चंद चांदी के वर्क और जिंदगी का हौसला आया। ना बचा बचा के रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, ये शिकस्त हो तो अजीज तर निगाह आईना साज में, तू बचा बचा के रखता है दीवाना, ये जू टूटेगा अल्लाह के हां तेरी कदर जू होगी, अल्लाह की बारगाह में तेरी इज्जत, तेरी अजमत, तेरा वकार, तेरी शान और शौकत जू होगी। ना बचा बचा के इसे रख, आखिरी अशरा करीब है, रमजान पूरा देख रहा हूं, हमारे जहन में बात पता नहीं किसने बिठा दी है कि रमजान तो आराम का वक्त है, رمضان میں جس نے روزے رکھنے ہیں, جس نے نہیں رکھنے نہیں رکھنے, جس نے بھی رکھنے ہیں, جس کو تقوی کی انتہا ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آرام سکون رمضان میں کچھ نہیں. نہیں, ہماری پچھلی تاریخ اسلام میں رمضان میں بڑے بڑے مارکے ہوئے, سفر ہوئے, ہجرتیں ہوئیں, رمضان میں بڑے بڑے نظام چلے اور رمضان میں بڑی بڑی ترتیبیں بنی. آپ تاریخ اٹھائیں, پچھلی تاریخ اٹھائیں. دوسرے لفظوں میں رمضان عبادت اور خدمت کا نام ہے, عبادت اور خدمت کا نام ہے, محنت کا نام ہے, اور اس کا اثر اللہ آپ کی نسلوں میں, آپ میں رزق کی برکتوں کی رحمتوں کی مقدمات, پریشانیاں, مشکلات, مسائل, یہ الجھنے میرا اللہ ختم کرتا جائے گا اور اللہ آنکھوں سے دکھائے گا. آؤ, اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح میں کر کے دکھاتا ہوں. پھر کون سا رمضان گزارنا ہے, عبادت خدمت والا یا اکیلا عبادت والا؟ اور سونے والی عبادت کون سی عبادت؟ یقین جانیے بعض چہروں کو میں جانتا ہوں, تسبیح خانے میں 3-4 دفعہ سو کے بھی پھر میرے سامنے بیٹھے سو رہے ہوتے ہیں اور میں ان کو افسوس کر رہا ہوتا ہوں. 3-4 دفعہ نیند, جھگڑا اور لسی واحد چیز ہے, بڑھاتے جاؤ بڑھتی جائے گی. لسی میں اور پانی ڈال دو, لسی لسی رہے گی, اور نیند اور بڑھا دو بڑھتی جائے گی, اور جھگڑا اور بڑھا دو بڑھتا جائے گا. نیند, لسی اور جھگڑا یوں بڑھتی جائے گی. ہمارے یہاں تسبیح خانے میں ایک بندہ وقت گزارنے آیا, اس کو کہنے لگا کہ اگر میں تھوڑا سا ہوں میرے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے, درد ہوتی ہے, میں بیمار ہو جاتا ہوں, میں تکلیف میں ہو جاتا ہوں. وہ دن میں 18-19 گھنٹے سوتا تھا اور اس نے اپنی نیند کو اتنا بڑھایا, اگر تھوڑا سوتا بیمار ہو جاتا تھا. میری منت ہے, میری درخواست ہے, میں آخری عشرے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, آخری عشرے کی دوسرے عشرے کی اثر ہو گئی ہے, آخری عشرے کی صبح آنے والی ہے, اس کی تیاری کریں اور اپنے لیے فیصلے کروانے ہیں. بس آخری عشرہ تو مزدوری لینے کا وقت ہے, لیکن مزدوری وہ لے گا جو خدمت اور عبادت دونوں کو توازن کے ساتھ لے کے چلے گا, اور خدمت کو بھی سعادت سمجھ کے اور عبادت کو بھی سعادت سمجھ کے چلے گا. اور انشاءاللہ تعالی پھر کیا ہوگا, جو سارا مہینہ مشق انہی چیزوں کی کرتا رہے گا انہی کے لیے معین الدین کے لقب چنے جاتے ہیں, انہی کے پاؤں کو دیکھ کے, انہی کی نسلوں کے پاؤں کو دیکھ کے. بابا جی کہتے ہیں اس کو بلاؤ ہمارے ساتھ سلاؤ, اور 11 راتوں کے بعد کہتے ہیں جا رنگ دیا تجھے. ان کی نسلیں, 7ویں نسل کا مٹی کا پاؤں دیکھا. اگر آپ کہتے ہیں پاؤں سے کچھ نہیں ہوتا, اسے پیرڑی کہتے ہیں جو چور کا پاؤں اٹھاتے ہیں اور چور تک پہنچ جاتے ہیں. اب تو وہ رسم ختم ہو گئی, چور کا پاؤں اتنا تو تھا آٹا لینے والی دکان پہ, بات لمبی ہو رہی آج, آٹا لینے والی دکان پہ ایک بندے نے آٹے کے اوپر ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے ساتھ بندے نے پکڑ لیا ہاتھ, لوگوں کو کہنے لگا یہ ہمیں مطلوب تھا, یہ چور ہے. آج سے 16 سال پہلے یا 14 یا 16 سال پہلے اس نے فلاں جگہ چوری کی تھی, اس کے ہاتھ اور پاؤں کے نشان میں نے پکڑے تھے, یہ وہی ہاتھ ہے. جھگڑا ہو گیا, بندے آ گئے, انہوں نے کہا شریف آدمی پہ الزام لگا رہا ہے. انہوں نے کہا میرا نام یہ ہے, میں پیرڑی ہوں. پیرڑی کہتے ہیں جو پاؤں اٹھا کے لوگوں کے نشانات پہ چور پکڑتے ہیں, میں وہ ہوں. کھوجی, کھوجی, میں کھوجی ہوں, میں وہ ہوں. آخر کار اس بندے کو بلایا جس کا تھا, آخر کار پتہ چل گیا یہ چور ہے. 14 سال اس نے آٹے پہ ہاتھ رکھا تھا, آٹا لینے کا ڈھیر ہوتا ہے نا, اس میں جو ہاتھ رکھا, اگلا بھی آٹا لے رہا تھا, یہ بھی آٹا لے رہا تھا, وہیں پکڑا گیا. ہاتھ اور پاؤں کے نشانوں سے تو کہانی بن جاتی ہے دنیا کی, ہاتھ پاؤں کے نشانوں سے روحانیت کی کہانیاں نہیں بنتی. بنتی ہیں کوئی پہچان والی آنکھ ہو, کوئی شناسا آنکھ ہو, کوئی دیکھنے والا دل ہو, کوئی پرکھنے والی اندر کی نظر ہو, بنتے ہیں. کیا فیصلہ کیا؟ ہاں جی, کون سا رمضان آخری عشرے کا جس میں لمحات ہمارے قیمتی بن جائیں, ایسے لمحات, ایسے قیمتی لمحات کہ جس میں قدرت فیصلے کرتے, میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، ساری امت کے لیے، ہمارے بادشاہوں کے لیے، وزیروں، مشیروں، فقیروں، امیروں، غریبوں، سب کے لیے خیر برکت کے فیصلے کر دے۔ وہ رمضان آ رہا، اب خود فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے، کتنا وقت کس کو دینا ہے، کتنا وقت کس کو دینا ہے، اور کتنا وقت موبائل کو دینا ہے، کتنا زندگی کا کیسے کرنا ہے۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم اللهم بسمك كهف كتمير، اللهم بسمك كهف كتمير، اللهم بسمك كهف كتمير، آمين۔ دعا سے پہلے بڑی اہم دعا ہے، دعا سے پہلے ایک تھوڑی سی درخواست یہ سن لیں انشاءاللہ تعالی۔ 21 رمضان کی شب کو 313 دفعہ سورۃ کوثر کا عمل ہے، ہر بندہ پڑھے گا اور یہ زبردست عمل ہے، اور 21 کی شب کو ہی بیری کے پتوں کا عمل ہے اجتماعی، اور ناخن بال سنبھال کے رکھیں تاک راتوں کے لیے۔ رمضان کی 27 میں انشاءاللہ سادگی سے نکاح کرنے والے 9 بجے سے پہلے پہنچیں، عید الفطر 7 بجے ہے، اور خواتین کے تسبیح خانے میں حبس بہت ہے، ٹھنڈک کا نظام کا کوئی مشورہ ضرور دے۔ روحانی جانساروں کی ٹیم پوری محنت کرتی رہے، اور کاپیاں لکھنے والے پوری توجہ کرتے رہے۔ وہاڑی میں انشاءاللہ درس محفل 1 بجے دوپہر، عید کے تیسرے دن، اور انشاءاللہ تعالی ہماری اگر مرشد اور اس کی پیرو مرشد کی والدین کی دعائیں لینا چاہتے ہیں تو حویلی میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے قیام کریں۔ حیرت انگیز نفع، حیرت انگیز فائدہ۔ سبحان اللہ حمدہی، سبحانک اللہم حمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین۔ آمین، 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه وأزواجه وبناته وأهل بيته وعترته أجمعين، آمين برحمته۔ الله أكبر، سبحان الله۔ کیا حال ہیں آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ خوش ہیں؟ بھائی ہماری ایک لائٹ خراب ہے، ذمہ داروں کو چاہیے تھا اس کو بناتے، پہلے سے بناتے، کوئی وارث اگر ہوتا تو اس لائٹ کو پہلے سے بناتا۔ اداس تو نہیں ہو گئے؟ کیوں اللہ والا میری طرف دیکھے، اداس تو نہیں ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ تسبیح خانے نے، مجھے کئی لوگوں نے بتایا، پتہ نہیں آپ کے تاثرات کیا ہیں، تسبیح خانے نے اماں جیسا، ماں جیسی محبت دی، ماں جیسا انس دیا، ماں جیسی خدمت، ایسا ہے یا نہیں ہے کہ تسبیح خانے نے ہمیں یہ دی اور تسبیح خانے نے ہمیں یہ عنایت کی؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ تسبیح خانے نے کیا دیا؟ آپ میں سے کسی نے کہیں اور رمضان گزارا، نام نہ لیں، اس رمضان میں اس رمضان گزارنے میں کیا فرق ہے؟ کئی احباب ہیں جنہوں نے بے شمار رمضان کہیں اور گزارے، अब यहां भी रमजान गुजारने का वक्त मिला, मौका मिला, और कहीं नाम ना ले लेकिन बताएं वहां क्या था और यहां क्या है। वहां क्या था? कहते बहुत जगह गया हूं, मैं चाहता था क्योंकि ऐसी जगह भी मिलेगी जहां सच्ची रहनुमाई मिले, सच्ची रहबरी मिले। ये वह जगह मिली है जहां एक अनोखा सुकून है और अच्छा रमजान गुजरा। जी कराची से? हाँ जी माशाल्लाह। अच्छा जी आप जी मुख्तसर बात यानी घर में आप थे तो आपको ऐसे महसूस होता था कोई पेट्रोल का कैन फेंकता था आपके ऊपर और आग लगा देता था। बहुत तबीयत खराब के हर वक्त आग ही आग थी और जब यहां आया अब अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है। जी माशाल्लाह बहुत कुछ मिला। जी बहुत अच्छा रमजान गुजरा। जी हाँ जी आपने एक जगह कहते मैंने एतकाफ किया ना सोने देते थे ना टेक लगाने देते थे। और क्या मुशक्कत थी वहां? एक तो सोने नहीं देते थे, एक टेक नहीं लगाने देते थे, ना नहाने देना, ना फोन सुनने देना। वो कहते ना कुरान पढ़ने देते थे ना नफिल, कहते थे बस जिक्र करो। कहने रात जोहर सारी रात बयान सुनना, फिर जोहर तक फिर मश्क करानी। कह रही है मैंने देखा है ना तो ये कहता हूं सारे सुकून में अगर वहां चले तो फिर आपको वहां मजे दिखाऊं। कहते हैं कहते वो ऐसे उठाते हैं, कैसे उठाते हैं हा? टांग से खींचते हैं और हमारे यहां उठाने के लिए पांव दबाते हैं, मिन्नत करते हैं। कहने लगे मैं यहां आया तो दिल नहीं लग रहा था कि भागने की कैफियत थी कि भाग जाऊं। अल्लाह पाक ने फिर यहां जमा दिया, जमा दिया। जी कहते अब अल्लाह ने खिदमत मुझसे ली, पंखे साफ मैंने किए, इसमें सआदत मेरा हिस्सा मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे जी जी बोले जी, बात करें, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह बरकत दे, बहुत बरकत पाई। अच्छा गुजारिश ये है जी, कहते तस्बीह खाने में पहला रमजान में घर में रोजे रखता था, नाफ का मसला, नाफ पड़ जाती थी। कह रहे 17 रमजान गुजर गया, नाफ का पता नहीं। अच्छा एक बात और बड़ी होती है, लोग इतनी बड़ी गोलियां डब्बे पैकेट भर के ले आते हैं, यहां गोलियों का होश नहीं रहता, ये बात भी है, अक्सर लोग कहते हैं है, पसली क्रैक है, दवाई उधर पड़ी हुई है। अच्छा ये लोग अक्सर मुझे बता, आप में है कोई बंदा जो कहता है कि बहुत गोलियां लेके आया था, डब्बियां लेके आया था, दवाई वहीं पड़ी हुई है, अल्लाह की रहमत ने अपना इलाज किया और फजल किया, करम किया जी। कहते मैं पहला रमजान है तस्बीह खाने में एक दिन के लिए घर गया हूं, सुकून नहीं मिला, आखिर घर में वापस वहीं आ गया हूं। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ जी, कहने लगे हड्डी टूटी दर्द था, अब अल्हम्दुलिल्लाह यहां आके बहुत एहसास और फर्क है। कहते इतना काफी है कि घर जाने को दिल नहीं करता। अच्छा गुजारिश ये है, उसकी एक वजह है, यहां दिन रात रूहानी और नूरानी माहौल है, बरकतें हैं, खैरें हैं, राहतें हैं, और ये सआदतें अल्हम्दुलिल्लाह आपने कदरदानी से ली हैं। जो सबसे ज्यादा आपके अंदर जो चीज है ना, आप कदरदानी से रह रहे हैं, एक एक जर्रे, एक एक जगह, एक एक कदम को चूमते हैं, कदरदानी से रह रहे हैं, खाने की कदरदानी, दस्तरखान की, वजू खाने की, पानी की, इजली की, पंखे की, और सबसे बड़ी बात यह है एतराज नहीं करते आप हजरात, एतराज नहीं कर रहे, नेमतों की कदरदानी है, आपके अंदर एतराज नहीं है, और एतराज ना करने वाला अल्लाह अकबर, बस उसके अंदर अल्लाह की गैबी निजाम उसके साथ हो जाता है, आपके अंदर एतराज ना करने का मिजाज है, और यह तबीयत अल्लाह के फजल से आप जो बना रहे हैं ये सारी जिंदगी इंशाल्लाह चले, जिंदगी में खुशहाली आएंगे। एतराज ना करना लोगों पे, दूसरों पे, ये आपने नहीं किया, आप सबको समझते हैं बस ये वली है मैं कमजोर हूं, ये आपके अंदर जो सिफत है ना, ये सिफत बहुत बड़ी सिफत है और ये बाकमाल सिफत है, ये अल्लाह पाक ने आपको जो अता की है, अल्लाह ने अता जी। कहते मैं बस इशा पढ़ने आता हूँ, मुसाफिर हूँ, असल कराची का हूँ, जो माहौल यहाँ देखा है जिंदगी भर नहीं देखा, दुआ करें ये जिंदगी भर ऐसा माहौल मिलता रहे जी। बस वो कहते हैं आने से पहले तबीयत खराब थी, लाहौर तक खराब थी, बस यूं तस्बीह खाने का दरवाजा, अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अब एक सिफत और आपके अंदर है, एक सिफत और आपके अंदर है, वो है कि आपने अपने तजर्बा मुशाहदात छुपाए नहीं। अच्छा पहले आप खामोश बैठे रहते थे, छुपाते नहीं थे, बस ये खामोश बैठे हैं, बाज़ वक़्त ना इंसान में झिझक होती है, वो छुपा नहीं रहा होता, झिझक होती है खड़े होने की, जैसे कुछ बंदे को आज अजान दे दे, कह रहे मुझे शर्म आ रही है, अब ये तो नहीं है कि वो कहे मैं गुनहगार हो रहा हूं, बाजू का झिझक होती है, अपने झिझक खत्म की, अपने रूहानी तिब्बी तजर्बात मुशाहदात जो पाया जो मिले जो आपकी जिंदगी का नचोड़ है वो आपने लोगों को देना शुरू कर दिया, ये सखावत की इब्तदा है, और यहां अल्लाह पाक आपसे राजी होके आपको बांटने वाले को मिलता है या छिनता है, फिर नहीं सुना। बांटने वाले को मिलता है या छिनता है? मिलता है। तो उसे पांच बंदे बता दें कि हमें कोई टोटका वजीफा या कोई तिब्बी टोटका, कोई किसी खास बीमारी तकलीफ के लिए, सिर्फ पांच बंदे बता दें कि मेरे पास ये टोटका है। जी कह लेगा आज मैं नहाने गया, अंगूठी मेरी वहीं रह गई, तो या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं पढ़ता रहा तो अंगूठी मिल गई। जी हाँ कहने लगे जिन्नात बहुत थे, बहुत ज्यादा थे, अल्लाह बिस्मे का कहफ कितमीर पढ़ा पढ़ा यूं जिन्नात चले गए। जी या ममी तो या काबिज हो या सबूर हो या माने हो या हफीज हो, पुराने जादू को तोड़ने के लिए बस आखिरी हल है। जी ला खिलाबा पढ़ने से क्या कहते हैं, 350 वाला सूट 250 में मिला ला खिलाबा पढ़ने से। जी किसके लिए? अठरा जैसी खतरनाक बीमारी के लिए, अठरा जिन खवातीन को होती है, तो 313 दफा अल मालिको अल कुद्दूस अस्सलाम और तीन तावीजात का मजमुआ बहुत इकसीर चीज है, बा कमाल चीज है। जी क्या कहते हैं है? कानों में अगर शोर हो हाँ, सरसों का तेल गरम करें और चम्मच में डाल के और एक एक कतरा कान में डालें तो कानों का शोर खत्म हो जाएगा। सूरत फलक एक दफा पढ़ के दम करें उस पे, ठीक है। अगर कहते हैं हबस हो तो स्टैंड वाले के पंखे का बाहर की तरफ मुंह कर दें, वो हबस को खींच देगा, ठीक है। जी 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 कहते मेरे दादा हकीम थे, वो अजवाइन में, देसी अजवाइन में थोड़ा सा गंधक का तेजाब डालते और उसको खूब बारीक पीसते, खरल करते थे और फिर चुटकी चुटकी इस्तेमाल कराते, मैदे के लिए बहुत लाजवाब चीज है। जी कहते अजवाइन एक हिस्सा, नमक काला, नमक खुर्दनी तीन हिस्से, सना मक्की दो हिस्से, ये कूट पीसकर नौजवानों की कितनी तकलीफें कोई भी हो आधी चमची सुबह शाम बेहतरीन चीज है। जी खांसी के लिए जो है गर्म पानी के कप में शहद डालें, उसे मिलाएं, कहते हैं एक चम्मच शहद ले लें, उसके अंदर काली मिर्च पीस के डाल दें, अच्छा आधी प्याली शहद, उसमें काली मिर्च और फिर कच्चा अमरूद की को भूबल में राख में दबाएं और एक छुआरा जब ये जल जाए तो फिर ये राख भी उसी के अंदर डाल के फिर इसको चाटें ऐसे। हाँ खांसी के लिए जी। कहीं जख्म हो तकलीफ हो बवासीरी मस्से हो तो जैतून के तेल में सना मक्की के पत्ते मेहंदी के पत्ते जलाएं और वहां लगाएं जलाएं और वहां तेल लगाएं ठीक हो जाएं जी। जो चाहता है कि रोजा सारा दिन मेरा बेहतरीन रहे रात की बासी रोटी खाए दही के साथ बासी रोटी। और वाकई पुराने तजर्बाकार यही करते थे पिछले रमजान तजर्बा किया। हाँ बासी रोटी हो दही हो और शक्कर हो और ये नेमतें तस्बीह खाने में मिल जाती हैं रात वाली रोटी बंदा संभाल के रखा रख ले। रात वाली रोटी बासी और दही के साथ खाए फिर और जो जो चाय और ये पीते हैं फिर उसका क्या है चाय भी साथ फिर रोजा को ताकत देती है। मेरा तो मुशाहिदा है कि बासी रोटी और दही और शक्कर फिर आप चाहे जितनी गर्मी हो और जितना 18 घंटे का रोजा हो। कौन अस्सलाम वालेकुम वजीफे के कहते हैं इजाजत है सबको इजाजत है। लिख के देना तफसील लगता है बहुत बड़ी है। जो चाहता है मैं कभी एक्सीडेंट ना हो 3 दफा आयतल कुर्सी जरूर पढ़े। टाइफाइड के कहते हैं आजमूदा इलाज है आंतों में टाइफाइड हो बार बार बुखार आता हो एक छटाक देसी अजवाइन तवे पे जला ले बिरियां हल्का हल्का भून लें उतनी चीनी मिला लें। कह रहे मुझे टाइफाइड हुआ था नहीं छोड़ रहा था उतनी चीनी मिला लें उसको अजवाइन को बुरियां कर लें एक चम्मच सुबह शाम में। खून बह रहा हो तो उसके लिए राख लगाएं बहुत आजमूदा है। हेक्टिक है इक्सीर है हेक्टिक कहते हैं आखिरी तजर्बा शोदा जी। जालिका खफी जालिका तखफीफ में रब्बिकुम वरहमा कागज पर लिखकर नाफ में बांध दे तो नाफ ठीक हो जाएगी अगर नाफ पड़ी हो तो। ठीक जजाक। अच्छा जी आज की नशिस्त खत्म आपके आराम का वक्त है। परेज आज की मेरी दरखास्त आज की मेरी मिन्नत रमजान के बारे में और आखिरी अशरे की तैयारी के बारे में आज की मेरी मिन्नत आज की मेरी दरख्वास्त इसको जरूर सोचें और संजीदगी से बैठ के खवातीन भी आप भी जरूर सोचें और संजीदगी से बैठ के सोचें कि मैंने आज की जो मिन्नतें आपसे दरख्वास्त की हैं कैसे की हैं क्यों की हैं और इसका जिंदगी पे क्या असर होगा। ضرور کیجئے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ ملاقات. السلام علیکم.